एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अंधेरी जिंदगी, अनजानी राह, खोई मंजिल, अकेला राह, आलम था मेरा यकीन, मगर किसी ने मुझे पुकारा, मुझे संवारा, मुझे समझा, और मैंने जाना यह वही है मेरा मंजिल, मेरा मसीह। राहों में चार सू ढूंढे तुझको नजर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हम सफर, राहों में चार सू ढूंढे तुझको नजर। मुझको अब रात दिन तेरी ही चाह है, आंख जब बंद करूं तू मेरे पास है, मुझको अब रात दिन तेरी ही चाह है, आंख जब बंद करूं तू मेरे पास है। साल और माह भर दिन को आठों पहर, राहों में चार सू ढूंढे तुझको नजर, कट जाएगी। तू मुझे घर मिला बात बन जाएगी। तेरे बिन जिंदगी यूं ही कट जाएगी। तू मुझे घर मिला बात बन जाएगी। अपने बीमार पर डाल तू एक नजर, राहों में चार सू ढूंढ तुझको नजर। महबूब तू, तू है मेरा खुदा। ऐ मसीहा मेरे हो न मुझसे जुदा। ओ मेरा महबूब तू, तू है मेरा खुदा। ऐ मसीहा मेरे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आज का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। हमारे संग हो, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, और हम सबों को तेरा वचन से बहुतायत से आशीष दे। विशेषकर मेरे श्रोताओं को तेरे वचन से बहुतायत से आशीष दे पिता, और मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है पैर धोने का संस्कार। धूल भरे पैरों के साथ यीशु के चेले फसह के लिए अटारी पर पहुंचे। किसी ने पारंपरिक पैर धोने के लिए पानी का घड़ा, एक चिलमची और एक तौलिया प्रदान किया था, लेकिन कोई भी यह छोटा काम नहीं करना चाहता था। अपनी निकट मृत्यु के बारे में जानते हुए यीशु ने दुख के साथ कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं इसे कभी ना खाऊंगा। लूका 22 का 15 और 16। चेलों ने एक दूसरे के प्रति जिस ईर्ष्या को बनाए रखा था, उसने यीशु के हृदय को उदासी से भर दिया। उसने महसूस किया कि वे अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि उसके राज्य में सबसे बड़ा किसे माना जाना चाहिए। यह हम पाते हैं लूका 22 का 24, मत्ती 18 का 1 और मत्ती 20 का 21 में। पद के लिए उनकी चालबाजी, उनका अभिमान और स्वाभिमान शिष्यों को स्वयं को विनम्र करने, नौकर के स्थान पर रखने और दूसरों के पैर धोने से रोक रहा था। क्या वे कभी सीखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में सच्ची महानता नम्रता और प्रेमयी सेवा से प्रकट होती है? भोज के दौरान यहूना 13 का 2 और 4 में हम पाते हैं, यीशु चुपचाप उठा, नौकर का तौलिया लिया, चिलमची में पानी डाला, घुटने टेके और शिष्यों के पैर धोने शुरू कर दिए। स्वामी सेवक के रूप में अनकही फटकार को समझकर शिष्य लज्जित हो उठे। जब वह अपना काम पूरा करके अपने स्थान पर लौट आया तो उसने कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13:14-17। फिर यीशु ने फसह के स्थान पर उस विधि की स्थापना की जो उसके महान बलिदान को यादगार बनाने के लिए थी, प्रभु भोज। अखमीरी रोटी लेकर उसने धन्यवाद करके उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने आशीर्वाद का कटोरा भी लिया और धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जितनी बार तुम इसे पीते हो तुम याद रखना, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसके लिए हम बाइबल से देख सकते हैं मत्ती 26:26-28, पहला कुरंतियों 11:24-26 और पहला कुरंतियों 10:16। पैर धोने और प्रभु भोज के संस्कार सहभागिता की रस्म को बनाते हैं। इस प्रकार मसीह ने इन दोनों संस्कारों को उसके साथ सहभागिता में प्रवेश करने में हमारी सहायता करने के लिए स्थापित किया। परंपरा की मांग है कि फसह मनाने में यहूदी परिवार अखमीरी रोटी के सप्ताह के पहले दिन से पहले अपने घरों से सभी खमीर को हटा दें जो पाप का प्रतिनिधित्व करता है, निर्गमन 12:15-19-20। इसलिए विश्वासियों को सभी पापों को स्वीकार करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। घमंड, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, आक्रोश की भावनाएं और स्वार्थ सहित इससे पहले कि वे इस गहरे स्तर पर मसीह के साथ सहभागिता करने के लिए सही भावना में हो। इसीलिए मसीह ने पैर धोने के संस्कार की स्थापना की। उसने न केवल एक उदाहरण स्थापित किया बल्कि कहा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और उन्हें एक आशीर्वाद देने का वादा भी किया, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13:17। यह संस्कार प्रभु भोज से पहले इस आदेश को पूरा करता है कि सभी को स्वयं की जांच करनी चाहिए ताकि उस भोजन में अयोग्य तरीके से भाग ना ले। पहला कुरंथियों 11:27-29। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार दोनों मसीह के विशेष कार्य और भाग लेने वालों के अनुभव के बारे में कुछ बताता है। पहला है मसीह की नम्रता का स्मारक। पैर धोने का संस्कार मसीह के अवतरण और सेवा के जीवन में उसके नम्र होने को यादगार बनाता है। यद्यपि उसने स्वर्गीय महिमा के बीच पिता के साथ एक पद धारण किया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यह हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2:7 में। परमेश्वर के पुत्र के लिए इतने निस्वार्थ रूप से, इतने प्रेम से अपने आप को देना अपमानजनक था। केवल उन अधिकांश लोगों के द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए जिन्हें वह बचाने आया था। मसीह के पूरे संसारिक जीवन के दौरान शैतान ने हर मोड़ पर उसे पूरी तरह से अपमानित करने की ठान ली थी। क्या ही अपमान उसका हुआ होगा निर्दोष को जब एक अपराधी के रूप में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। मसीह ने निस्वार्थ सेवा का जीवन जिया। वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मत्ती 20:28। पैर धोने के कार्य के माध्यम से उसने दिखाया कि वह लोगों को बचाने के लिए कोई भी सेवा करेगा, चाहे वह कितनी ही नीच क्यों ना हो। इस प्रकार उसने अपने अनुयायियों के मन को सेवा और नम्रता के अपने जीवन से प्रभावित किया। इस तैयारी की विधि को एक संस्कार बनाने में मसीह का इरादा विश्वासियों को कोमलता और प्रेम की स्थिति में ले जाना था, जो उन्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। यह संस्कार उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो दूसरों के साथ विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए इसके महत्व पर विचार करते हैं। पैर धोने में मसीह का अनुसरण करके हम उसके स्वभाव को अपनाते हैं। प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, कहता है गलातियों 5:13। हालांकि इस विधि में भाग लेना विनम्रता है, लेकिन यह अपमानजनक नहीं है। कौन मसीह के सामने झुकने और क्रूस पर चढ़ाए गए पैरों को धोने के लिए विशेष अधिकार महसूस नहीं करेगा? यीशु ने कहा, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हम पढ़ते हैं इसे मत्ती 25:40 में। दूसरा है एक प्रकार की उच्च शुद्धि। पैरों के धोने ने पैरों को साफ करने से ज्यादा किया। यह एक उच्च शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, हृदय का शुद्धिकरण। जब पतरस ने यीशु से उसे पूरी तरह धोने के लिए कहा, तो यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, यूहन्ना 13:10। जो स्नान करता है वह शुद्ध होता है, फिर भी खुले सैंडल पहने पैर जल्द ही धूल दूषित हो गए और उन्हें फिर से धोने की जरूरत पड़ी। ऐसा ही शिष्यों के साथ था। उनके पाप बपतिस्मे के द्वारा धुल गए थे, लेकिन परीक्षा ने उन्हें अपने मन में घमंड, ईर्ष्या और बुराई को संजोने के लिए प्रेरित किया था। वे प्रभु के साथ अंतरंग सहभागिता करने के लिए उस नई वाचा जो वह उनके साथ बनाने वाला था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। पैर धोने के द्वारा मसीह ने उन्हें प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार करने की इच्छा की। यहूदा को छोड़कर जो विश्वासघाती था, उनके हृदय स्वार्थ और गर्व से मसीह के अनुग्रह द्वारा शुद्ध किए गए थे और वे एक दूसरे के प्रेम में एकजुट हो गए थे। यीशु के निस्वार्थ कार्य से वे दीन हो गए और सीखने योग्य हो गए। चेलों की तरह जब हमने मसीह को स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा लिया, तो हम उसके लहू से शुद्ध हो गए। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह जीवन जीते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हमारे पैर धूल दूषित हो जाते हैं। हमें फिर से मसीह के पास आना चाहिए और उसके शुद्धिकरण के अनुग्रह को अशुद्धता को दूर करने देना चाहिए। हालांकि हमें फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, कहता है यूहन्ना 13:10। एक संस्कार के रूप में पैर धोना हमें नियमित शुद्धि की हमारी आवश्यकता की याद दिलाता है और यह कि हम पूरी तरह से मसीह के लहू पर निर्भर हैं। पांव धोने से पाप धुल नहीं सकता, केवल मसीह ही हमें शुद्ध कर सकता है। तीसरा, क्षमा की एक संगति। भाग लेने वालों के बीच क्षमा का रवैया इंगित करता है कि यह विधि जो शुद्धिकरण का प्रतीक है वह प्रभावी हो गई है। केवल जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर की क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यह हम पाते हैं मत्ती 6:14-15 में। यीशु ने कहा, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, यूहन्ना 13:14। हमें दूसरे के पैर धोने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरे के द्वारा धोए जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरे के द्वारा धोए जाने के मामले में हम स्वीकार करते हैं कि हमें आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता है। जब विधि समाप्त हो जाती है तो हमारा विश्वास हमें भरोसा दिलाता है कि हम शुद्ध हैं, क्योंकि हमारे पाप धुल गए हैं। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। लेकिन यह सह विश्वासी हैं जो हमें मसीह की सेवकाई के प्रतीकों का संचालन करते हैं, और इसलिए यह सेवा क्षमा की संगति बन जाती है। चौथा है, मसीह और विश्वासियों के साथ एक संगति। यह पैर धोने की विधि अंत तक अपने अनुयायियों के लिए मसीह के प्रेम को प्रदर्शित करती है, यूहन्ना 13:1। जब पतरस ने अपने पांव धुलवाने से इनकार कर दिया तो मसीह ने उत्तर दिया, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यह हम पढ़ते हैं पद 8 में। शुद्धि नहीं, संगति नहीं। जो मसीह के साथ निरंतर संगति की इच्छा रखते हैं वे इस संस्कार में भाग लेंगे। उसी शाम यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। पद 34। संस्कार का संदेश स्पष्ट है, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, गलातियों 5:13। इस प्रकार का प्रेम होने का अर्थ है कि हम अपने पड़ोसियों को अपने से बेहतर सम्मान देकर अपने पड़ोसियों को सर्वोच्च स्थान देंगे, फिलिपियों 2:3। यह हमें उन लोगों से प्रेम करने के लिए बाध्य करता है जो हमसे असहमत हैं। यह हमें ना तो सर्वोच्चता और ना ही पक्षपात की भावना रखने का अवसर देता है। हमारी जीवन शैली सह विश्वासियों के लिए हमारे प्रेम को प्रतिबिंबित करेगी। उनके सामने घुटने टेक कर उनके पैर धोते हुए हम आनंदित होते हैं कि हम उनके साथ अनंत काल तक रहेंगे। वे सभी जो इस संस्कार में मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हैं वे किसी न किसी रूप में अनुभव करेंगे कि मसीह की तरह प्रेम करने का क्या अर्थ है, और ऐसा प्रेम एक सशक्त गवाह हो सकता है। एक बौद्ध भिक्षु ने एक बार एक प्रचारक से एक दृश्य सुझाने के लिए कहा जो मसीही धर्म का प्रतिनिधित्व करता हो। कलाकारों को मठ के मैदान में एक हॉल की दीवार को चित्रों से और उभरी हुई नकाशी से सजाना था, जिसमें प्रमुख विश्व धर्मों को दर्शाया गया था। कुछ चिंतन के बाद प्रचारक ने यूहन्ना 13 में दिए गए वृतांत को साझा करना शुरू किया। भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा जब मैं पढ़ रहा था, प्रचारक ने याद करते हुए कहा, लेकिन मुझे एक अजीब भयावह शांति और शक्ति महसूस हुई जब पद्यांश यीशु द्वारा चेले के पैर धोने के कार्य का वर्णन कर रहा था। उस संस्कृति में सार्वजनिक रूप से पैरों के मामलों से संबंधित किसी भी चीज पर चर्चा करना बहुत खराब शिष्टाचार माना जाता है। जब मैंने पढ़ना समाप्त किया तो चुप्पी का एक पल था। उसने मेरी ओर अविश्वास से देखा और कहा, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आपके धर्म के संस्थापक ने अपने छात्रों के पैर धोए? हाँ, मैंने जवाब दिया, आम तौर पर भावे और सिर मुंडा, चंद्रमा जैसा शांत चेहरा सदमे और विस्मय से झुरीदार हो गया। वह अवाक था और मैं भी। मैंने कई बार बहुत मुश्किल से निकला और हम दोनों दृश्य के नाटक में घुस गए थे। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव सीधापूर्ण विस्मय में बदल गया। मसीह धर्म के संस्थापक यीशु ने गंदे मछुआरों के पैर छूकर धोए थे। कुछ क्षणों के बाद उसने अपने आप पर नियंत्रण किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं अब मसीह धर्म के मूल तत्व को देख सकता हूं, उसने कहा। हम देखते हैं सचमुच में यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे जीवन को ऊपर उठाने की चाह रखा था उसने, और अपने चेलों का पैर धो करके यह हमें सिखाता है, यह हमें समझाता है कि वह हम मनुष्य जाति को, हम लोगों को बचाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितना भी नीचे झुकने के लिए वह तैयार है। प्यारो, आइए हम मसीह के उस कार्य को, उसके प्रेम को समझे, उसके महानता को समझे, और उसके हमें अपने पापों को धोने दे और उसके पास आए। यीशु मसीह को अपनाइए। यीशु मसीह हमें धो करके, साफ करके अपनाना चाहता है कि हम उसके साथ सदा सदा के लिए अनंत काल तक उसके साथ रहें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस जगत में आया, हमसे प्रेम किया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान, अपने आप को बलिदान किया, और अपने चेलों का पैर भी धोने के लिए वह तैयार था, इतना नम्र हुआ। वह चाहता है कि हमें वह पाप से मुक्त करे, हमें पाप से बचाए और सर्वोच्च उद्धार करे। हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे पिता, हमें ग्रहण कर और तेरे पवित्र आत्मा का आशीष दे, ताकि सदा
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।